मशहूर और कामयाब लोगों के बीच बस एक मैं ही नाकाम थी। जिन लोगों को जिंदगी में ज्यादा अपमान का सामना करना पड़ा, क्या उनके डिप्रेशन का शिकार होने का डर अधिक होता है? डिप्रेस लोग शर्म के साथ जिंदगी जीते हैं। शर्म इस बात की कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, कामयाब नहीं हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ। शाहीन भट्ट, जो मशहूर एक्टर आलिया भट्ट की बहन है, उनके अनुभव से जानिए डिप्रेशन और उससे उबरने की दास्तान। मेरी सौतेली बहन पूजा उन दिनों एक्टिंग कर रही थी। उसने एक दिन अपने साथ वक्त बिताने के लिए मुझे और आलिया को ओल्ड पाली हिल के एक बंगले पर बुलाया। वहाँ वो किसी मैगजीन के लिए फ़ोटो शूट कर रही थी। हम दोनों वहाँ पहुँचे तो पूजा ने फोटोग्राफर से मैगजीन के शूट के बाद हम दोनों के साथ कुछ फैमिली फ़ोटो खींचने के लिए कहा। आलिया फ्रेम के बीचों बीच सबसे प्रमुख जगह पर जाकर खड़ी हो गई और उसने बहुत ही आत्मविश्वास और चमक दमक के साथ फ़ोटो खिंचवाए, जबकि मैं घबराई सी बेढब तरीके से उसके पीछे खड़ी हो गई। ये साफ था कि मैं अपनी दोनों बहनों से बिल्कुल अलग थी और अलग दिखती थी। आलिया पूजा की हूबहू कॉपी थी। दोनों गोरी थीं, दोनों के बाल हल्के रंग के थे और यहाँ तक कि नैन नक्श भी काफ़ी हद तक मिलते थे। दूसरी ओर मैंने हाल में काफ़ी वज़न बढ़ा लिया था और पहले से ही गहरा मेरा रंग धूप में ज़्यादा वक्त बिताने पर और गहरा हो गया था। मैं उन दोनों की तरह बिल्कुल नहीं देखती थी। कुछ ही मिनटों के बाद फोटोग्राफर मेरी तरफ मुड़ा और मुझसे फ्रेम से बाहर जाने को कहा। वो कुछ शॉट्स सिर्फ आलिया और पूजा के लेना चाहता था। मैं झूठी विरक्ति दिखाते हुए मुस्कुराई और बिना एक भी शब्द बोले फ्रेम से बाहर हो गई। कुछ महीने बाद आलिया और पूजा की वे तस्वीरें मैगजीन में छपीं। मैगजीन में मेरा जिक्र भी नहीं था। बड़ी होने के बाद मैं उस दिन के अनुभव को सिर्फ एक अनुभव के लिहाज से सराह सकती हूँ। ये भी सच है कि वहाँ कोई मेरी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था और वे सिर्फ उस समानता की सराहना कर रहे थे जो पूजा और आलिया के रूप में उनके सामने थी। लेकिन एक बच्चे के तौर पर मुझे सिर्फ यही लगा कि मैं उन फोटो में आने लायक नहीं थी। जब मैं घर आई और ख़ुद को आईने में देखा तो मुझे एक मोटी और भद्दी लड़की दिखी जो कभी भी अपनी बड़ी बहन जितनी खूबसूरत या छोटी बहन जितनी क्यूट नहीं हो सकती थी। मुझे नहीं मालूम कि डिप्रेशन क्यों होता है या क्या उन लोगों में डिप्रेशन में आने के आसार ज़्यादा होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में ज़्यादा अपमान का सामना करना पड़ा। मुझे बस इतना मालूम है कि डिप्रेशन के शिकार ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं शर्म के साथ जीते हैं। शर्म इस बात की कि मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हूँ, पर्याप्त स्मार्ट नहीं हूँ, पर्याप्त कामयाब नहीं हूँ, पर्याप्त खूबसूरत नहीं हूँ, पर्याप्त पतली नहीं हूँ, पर्याप्त प्रोडक्टिव नहीं हूँ, पर्याप्त खुश नहीं हूँ या पर्याप्त नॉर्मल नहीं हूँ। सही थेरेपिस्ट काफ़ी सब्र के बाद मिलता है। मेरी किशोरावस्था के शांत और किसी किसी मौके पर बिना शांति वाले संघर्ष के दिनों में मेरी माँ ने हमेशा मेरी मदद करने की कोशिश की, हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि समस्या क्या थी। और मैंने हमेशा उन्हें इससे बाहर रखते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है। वो मुझे धीरे से टोहने की कोशिश करते हैं, मुझे किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट से मिलने की पर्याप्त सलाह देती, लेकिन मैं बेरुखी से उनकी सलाह को हर बार नज़रअंदाज कर देती। वो देख सकती थी कि मैं संघर्ष कर रही थी, लेकिन मैंने उनसे समस्या का बदतर रूप छुपा लिया था और मुझ पर जो बीत रही थी उस दर्द को वो पूरी तरह समझ नहीं पाई। लेकिन उन गोलियों को खाने के बाद मैं जानती थी कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है। उम्र के दूसरे दशक की शुरुआत तक साइकोथेरेपिस्ट और साइकाइट्रिस्ट मेरी ज़िंदगी का नियमित हिस्सा बन चुके थे। मैं जल्दी ही ये सीख चुकी थी कि सही रिश्ते की तरह सही थेरेपिस्ट पाने के लिए काफ़ी सब्र की ज़रूरत होती है, जो कि कई बार निराश भी करता है। तुम न चाहो तो कोई बेइज्जत नहीं कर सकता। मेरे पापा ने बहुत पहले ही मुझे बता दिया था कि कोई भी तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हें बेइज्जत या शर्मिंदा नहीं कर सकता। जब मैं 8 साल की थी तो एक दिन स्कूल से रोते हुए घर आई। मेरे क्लासमेट ने मुझे स्टूपिड यानी मूर्ख कहा था क्योंकि मैं मैथ्स के टेस्ट में फेल हो गई थी। मुझे याद है पापा ने मेरी गुस्से वाली बल्कि नाटकीय तरीके से रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी तल्लीनता से तेज आवाज में कहा था, पहली बात बेवकूफ होने में कुछ गलत नहीं है, मैं मूर्ख हूँ बेटा, सिर्फ मूर्ख लोग ही सीख सकते हैं क्योंकि स्मार्ट लोगों को लगता है कि वो पहले ही सब जानते हैं। चेहरे पर आंसू लुढ़काते हुए मैं बोली, लेकिन पापा मैं मूर्ख नहीं हूँ। वो बोले, फिर क्या दिक्कत है, अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहता है और तुम मूर्ख हो तो तुम्हें ये बात परेशान करनी चाहिए क्योंकि वे जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन अगर तुम मूर्ख नहीं हो तो भी तुम्हें ये परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। 120 दिन आंसू बहाती रही। मैं जब इस बुरे दौर से गुजर रही थी वो वक्त मेरे परिवार के लिए खुशियों भरा और बड़े बदलाव वाला रहा। मेरी बहन को पहला रोल मिला था, उसकी पहली फिल्म पूरी होने वाली थी और वो जिंदगी बदलने वाली ख्याति हासिल करने के मोड़ पर थी। उसकी उपलब्धियों को लेकर मुझे गौरव महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी कामयाबी ने मेरी अपनी जिंदगी की खामियों को और फोकस में ला दिया था। एक बच्चे के तौर पर मुझमें जो असुरक्षा की भावना थी, डर था कि मुझमें कमी है, वो फिर से लौट आया था। मेरे परिवार में हर कोई एक ही इंडस्ट्री से जुड़ा है, मेरे पेरेंट्स, मेरी बड़ी बहन, मेरे कजन्स, मेरी आंटी अंकल और अब मेरी छोटी बहन सब फिल्में बनाते हैं। मेरे आसपास बेहद महत्वाकांक्षी कामयाब और मशहूर लोग हैं और एक मैं थी जिसकी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं थी सिवाय अपना बेडरूम छोड़ने के। अपनी उम्र के दूसरे दशक की शुरुआत और मध्य में मैं बीच बीच में काम करती रही, ज़्यादातर काम फिल्मों में किया, लेकिन नियमित रूप से काम करना मेरे लिए मुश्किल था। डिप्रेशन के लंबे दौर में काम करना वाकई मुश्किल था। इसने मेरा शारीरिक और जज्बाती तौर पर नुकसान किया क्योंकि मुझे अपने खराब मूड और भावनाओं को छुपाना पड़ता था। एक फिल्म में मैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थी, उस दौरान मैं अपना हर खाली लम्हा बाथरूम में बंद होकर या फिर किसी अकेले कोने में आंसुओं के बीच गुजारती थी। मैंने लगातार 120 दिन तक ऐसा किया। सच को स्वीकार करने से आया बदलाव। मुझे याद है कुछ साल पहले एक दिन मैंने पापा से पूछा था, मुझे हुआ क्या है, मुझे खुश रहना क्यों नहीं आता। पापा थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, तुम खुश क्यों रहना चाहती हो। मुझे बहुत ही अजीब सवाल लगा, मैं चिल्लाई, क्यों से क्या मतलब है आपका, हर कोई खुश रहना चाहता है। वो बोले, लेकिन क्यों। मैं नहीं जानती, लेकिन कोई भी हर वक्त दुखी क्यों रहना चाहेगा, ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही थकाऊ और परेशान करने वाला है। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, तुम खुश रहना चाहती हो क्योंकि सोसाइटी ने समझा दिया है कि तथाकथित नॉर्मल लोग हमेशा खुश रहते हैं। तुम खुश रहना चाहती हो क्योंकि तुम उन लोगों में फिट होना चाहती हो, लेकिन तुम किसी और के बनाए मापदंडों में फिट क्यों होना चाहती हो। तुम परेशान हो क्योंकि तुम हमेशा वो दिखाने की कोशिश करती हो जो तुम नहीं हो। तुम हमेशा इमोशनल खुशहाली की कथित आइडियल स्टेज पर पहुंचने की कोशिश में लगी रहती हो, जबकि वो स्टेज होती ही नहीं है। तुम अपनी पूरी जिंदगी बुरा लगने के एहसास के लिए बुरा महसूस करते नहीं बिता सकती। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी और पापा के शब्दों के बारे में सोचे जा रही थी। वो सही थे, जितना ज्यादा मैं कोशिश करती और नाकाम होती उतना ही ज्यादा मुझे बुरा लगता क्योंकि मैं फिर किसी चीज में नाकाम हो रही थी। इस एहसास के साथ कि मेरी सच को स्वीकार करने की शुरुआत हो चुकी थी। जिंदगी में ज्यादातर समस्याएं बदलाव को स्वीकार न कर पाने या चीजों में चिर स्थायित्व ढूंढने से होती हैं। इमोशंस को दबाने या छुपाने पर की गई रिसर्च बताती है कि जब इमोशंस को छुपाया जाता है या नज़रअंदाज किया जाता है तो इमोशन और ज्यादा मजबूत होते हैं। नेगेटिव इमोशंस असुरक्षा की भावना को दबाने से इंसानों के सबसे बुरे और नुकसान पहुंचाने वाले इमोशन शर्म का जन्म होता है। जितना से छुपाते हैं यह से लेकर चुप रहते हैं उतना ही शर्म बढ़ती है और फलती फूलती है। डिप्रेशन ने जो दिया उसकी शुक्रगुजार हूँ। किसी भी समस्या को सुलझाने का इकलौता तरीका समस्या को उसके मौजूदा रूप में स्वीकार करना है। साथ ही समस्या के समाधान का मतलब उसे जड़ से खत्म करना नहीं है। मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए डिप्रेशन एक लगातार चलने वाली यातना है और इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। मुझे सच को कबूल करना था कि मेरा दिमाग अलग है और इसी वजह से मेरी जिंदगी भी अलग है। मैं हर चीज़ को रोककर खुद के पूरी तरह ठीक होने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं अगर ऐसा करती तो काफ़ी वक्त लग जाता। स्वीकार करने की समझ होने के बाद जो बड़ा बदलाव आया वो था आभार जताना। डिप्रेशन ने मुझे जो दिया उसके लिए आभारी होना मैंने सीख लिया था, न कि जो डिप्रेशन ने लिया उसके लिए नाराज़ होना।